ओम शांति। स्वागत है आपका बाप दादा की मदद की मीठी यादें कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के द्वारा हम आपके बीच लेके आ रहे हैं वो यादें, वो पुराने यज्ञ के ऐतिहासिक पल जिसमें बाप दादा ने डायरेक्टली और प्रेरणा के द्वारा बहुत महान कार्य करवाए। वो कार्य जो आज न केवल यादगार बन गए लेकिन जिसने इस संस्था को खड़ा भी किया। और ऐसी यादें हमारे बीच में शेयर करने के लिए हमारे साथ हर बार मौजूद होते हैं आदरणीय ब्रजमोहन भाई साहब। भाई साहब, आज भी आपका स्वागत है हम सभी के बीच में।
ओम शांति।
ओम शांति। भाई साहब, आज हम आपके द्वारा जानना चाहेंगे बाप दादा ने ऐसे बड़े बड़े कार्यों में मदद कराई जिससे कि एक संस्था की इमेज, छवि, सेवा जो बाबा कहते हैं विहंग मार्ग से हुई। तो याद आता है ऐसी ही एक प्रोग्राम जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रोग्राम शायद जो दिल्ली में शुरू हुआ था नेहरू स्टेडियम में, तो उस प्रोग्राम के बारे में आप थोड़ा हमें पहले बताएं।
ये नेहरू स्टेडियम का प्रोग्राम वास्तव में ही यज्ञ के इतिहास में एक माइलस्टोन था
जी।
बाबा तो आगे पीछे सब जानते हैं, और बाबा ने उस प्रोग्राम को कैसे करवाया और कितने बड़े स्केल पर करवाया, ये भी एक बहुत गहरी बात थी। हुआ ये था कि दादी प्रकाशमणि जी, वो जितने भी हमारे यज्ञ के कार्य हुए हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत थी
जी।
हर वक्त उनका ध्यान रहता था कुछ नई बात करें। जैसे ब्रह्मा बाबा को नवीनता पसंद थी, तो दादी जी तो उसको प्रैक्टिकल में सारे भारत में करवाने के निमित्त बनती थी। कुछ भी शुरू हुआ तो दादी जी की फोर्स उसके बिहाइंड होती थी। तो उन दिनों एशियन गेम्स हुए थे दिल्ली में, तो उसमें एक बहुत बड़ा स्टेडियम न्यू दिल्ली में बनाया गया था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। पॉपुलरली उसको नेहरू स्टेडियम कहते थे
जी।
और वो इतना बड़ा था कि उसमें 80,000 की सीटिंग कैपेसिटी थी और बहुत आलीशान तरीके से वर्ल्ड स्टैंडर्ड से बनाया गया था, क्योंकि एशियन गेम में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम ही जो होते हैं वो स्वीकृति उनको मिलती है कार्यक्रम करवाने के लिए
जी।
उस लिहाज से इंडिया की भी इज्जत का सवाल था कि भारत के अंदर एशियन गेम्स हो रही हैं। तो कुछ स्टेडियम्स बनवाए गए थे, उसमें सबसे बड़ा ये नेहरू स्टेडियम था। अच्छा, तो इस नेहरू स्टेडियम में जितनी भी मॉडर्न स्टेडिया की फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब थी, लेकिन इसमें कार्यक्रम एशियन गेम्स तो हो गई, उसके बाद इतना बड़ा कार्यक्रम कहाँ होंगे। लेकिन इसका सारा मेंटेनेंस स्टाफ वगैरह रहता था, उसकी घास को ठीक करवाना, लेवलिंग कराना, अप टू डेट करना, और वहाँ कुछ स्पोर्ट्स की रिहर्सल करने के लिए परमिशन दी गई थी। हाई क्लास स्पोर्ट्स इंडिया में जो होते रहते हैं केवल उसकी परमिशन थी, और उसमें एक ट्रैक भी था दौड़ने के लिए, और उसमें बहुत सारे वीआईपीज़ के रहने के कमरे थे, केटरर भी एक रखा हुआ था ऑफिशियल, हर बिजली का अरेंजमेंट सब था। तो हमने ये सोचा दिल्ली वालों ने कि क्यों ना एक कार्यक्रम स्टेडियम में रखा जाए।
तो इसकी प्रेरणा दादी जी बने।
दादी जी ने तो कहा था कि आप दिल्ली में कोई विशेष कार्यक्रम करो
जी।
अब कहाँ करें, क्या करें
जी।
तो ड्रामा अनुसार सब ने कहा कि यहाँ पर करते हैं। अब क्वेश्चन ये था उस स्टेडियम को एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुक कराना
जी
मुश्किल है, क्योंकि वहाँ तो सरकारी प्रोग्राम होते हैं।
हाँ जी।
तो जब हम लोग गए वहाँ पर जो बुकिंग ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने कहा, वो भी हाई ऑफिशियल्स होते हैं, उन्होंने कहा जी कि तो स्पोर्ट्स के लिए बना हुआ है, तो आपका स्पोर्ट्स का तो कार्यक्रम नहीं है, हम कैसे इसको अलाउ करेंगे आपको। तो हमने कहा जी ऐसा है कि आप पहले हमारा मुद्दा समझ लीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो कुछ हम कर लेंगे। तो उन्होंने कहा बताइए, तो हमने कहा ऐसे है, हमारी ये ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पर दिल्ली कैपिटल सिटी है, और हमारी बड़ी दादियाँ जो माउंट आबू में रहती हैं वो आएंगी, बहुत बड़े VIPs आएंगे जिसे हम इसका उद्घाटन कराएंगे, बहुत बड़ा संगठन होगा, स्टेडियम की भी इज्जत बढ़ेगी। यहाँ कोई प्रोग्राम हुआ, गवर्नमेंट उस स्टेडियम को कायम रखने के लिए कभी कभी हॉलीडेज देकर, ऑफिशियल हॉलीडेज देकर भी कोई प्रोग्राम कराती थी नेशनल इंटरेस्ट, तब भी वो भरता नहीं था। और कई बार कई कल्चरल ग्रुप्स इंडिया फेमस, उन्होंने भी आके उसको बुक कराया, लेकिन तब भी वो कभी भरा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा स्टेडियम आप ले रहे हैं, हमने कहा हमारा संगठन है और हम आसपास के शहरों से भी लोग बुला लेंगे, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, आप परमिशन दे दीजिए।
तो ये कब की बात होगी भाई साहब?
ये
2003
में हुआ था ये फर्स्ट बड़ा प्रोग्राम। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए हम तो स्पोर्ट्स के लिए दे सकते हैं, दूसरी बात ये है कि आप जो कार्यक्रम करेंगे अच्छा ही करेंगे, लेकिन इसमें हमारा ट्रैक बना हुआ है स्टेडियम के अंदर, और वो ट्रैक ज़रा सा भी बिगड़ गया तो हमारा तो नाम ही कट जाएगा, जो ऑथोराइज स्टेडिया होते हैं तो हम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं। तो हमने कहा हम उस ट्रैक को पूरा बैरिकेड करवा देंगे, कवर करा देंगे, उस पर कोई पैर भी नहीं रखेगा। तो अच्छा, ऐसा उन्होंने कहा। फिर हमने कहा अच्छा हम स्पोर्ट्स भी करा देते हैं। तो हमने, हमारा स्पोर्ट्स विंग है
जी,
तो स्पोर्ट्स विंग की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ रख दी।
अच्छा।
स्पोर्ट्स विंग भिन्न भिन्न कार्यक्रम करते रहते हैं ना, अब इतना बड़े स्टेडियम में स्पोर्ट्स तो करा नहीं सकते थे, तो हमने वहाँ, शशि बहन इंचार्ज है हमारी, तो हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ रख दी बाकायदा तौर पे, जो जो हमारे प्राइज विनर्स थे उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया।
तो ये कॉम्पिटिशन कहाँ हुए थे स्पोर्ट्स?
कॉम्पिटिशन पहले होते रहते हैं ना हमारे, तो उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ रखवा दिया, तो वो लोग बड़े भी खुश हो गए स्पोर्ट्स हमारे विंग वाले। इस प्रकार से हमने वो कर दिया, और उसके बाद हमने कहा कि हमें ये स्टेडियम, उसकी तैयारी भी करनी होती है, बहुत बड़ा होता है और उसको साफ़ करना पड़ता है क्योंकि ओपन होता है, तो सारा प्रबंध करके उसको धुलाई करके इतनी सारी सीट्स को संभालना। फिर उन्होंने कहा अच्छा हम आपको दे देते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे NOC लेने पड़ते हैं, अनेक डिपार्टमेंट से NOC लेने पड़ते हैं
जी।
तो हमने कहा हम NOC ले आएंगे, तो कई प्रकार के फायर डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, सबसे ज़्यादा होता है पुलिस डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी का सवाल होता है। पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने, जो वहाँ एक एक्स डिपार्टमेंट होता है जो इस तरह की परमिशन देता है, उसमें ACP होते हैं
जी,
असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो उनके ऑफिस में हम गए, तो उन्होंने लोकल जो स्टेशन, पुलिस स्टेशन होता है उससे रिपोर्ट मांगते हैं। तो लोकल पुलिस स्टेशन ने कहा कि ये स्टेडियम तो हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये नवंबर में हमारा प्रोग्राम था और जनवरी, 26 जनवरी के लिए वहाँ आके मिलिट्री स्टेशन होती थी, उस खुला था ना, उसके आसपास भी जगह थी, तो मिलिट्री को परेड करनी होती है 26 जनवरी को, तो वहाँ अपने सारे साजो सामान वो सब ला के कैंप लगाते हैं, वो उसी में रखते थे। तो हमने कहा भाई, वो कहते ये तो बहुत मुश्किल हो गया, तो आपको दे ही नहीं सकते, मिलिट्री प्रायोरिटी है, 26 जनवरी तो प्रायोरिटी है,
नेशनल प्रायोरिटी है,
और हर साल वो यहाँ करते हैं
जी।
तो फिर क्या हुआ, अचानक एक हमारी सिस्टर है मृदुला सिंह, वो बहुत बड़े हाई फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिसर की वाइफ है, तो वो सेंटर में आती है, तो उस सिरीफोर्ड सेंटर में, तो उसने बहनों को कहा कि कल मैं एक प्रोग्राम में गई थी, वहाँ एक थे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन्होंने अपना कार्ड दिया है और उन्होंने 1970 में शांति बहन जी से कोर्स किया हुआ, वो उनको याद कर रहे थे। अच्छा, अब देखो ड्रामा कैसे बनता है। तो शांति बहन जी और एक दूसरी बहन उनसे मिलने गए, वो तो बहुत खुश हुए, जैसे वो घर का समझते थे, उनको कोर्स करवाया हुआ था, बड़े ही कोऑपरेटिव थे। तो बहन जी ने कहा कि ये हमारा बहुत बड़ा समस्या आ गई, कहते कोई बात नहीं। तो उन्होंने ऐसा ऑर्गेनाइज किया कि वो जो मिलिट्री वाले कैंप लगाने थे ना, वो आउटसाइड लगा लेंगे, बहुत खुली जगह थी, तो स्टेडियम 2 दिन के लिए हमको मिल जाएगा,
क्योंकि हमको तो मेनली अरीना चाहिए,
बस अरीना ही चाहिए था। तो उनकी मदद से फिर उसका भी NOC मिल गया।
तो बाकी सबसे एनओसी भी सहज मिल गया?
बाकी मिल गए, क्योंकि वो अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो उनको बहनें जाती हैं, प्रोग्राम बताती हैं, ओपन स्टेडियम है, फायर का कोई ख़तरा नहीं होता, कई प्रकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट थे। अच्छा, उसमें फर्स्ट एड भी आता है, कई कुछ आता है। अच्छा, तो वो बहुत बड़ा स्टेडियम था। तो ये हमको जब मिल गए तो हमने फिर दो, हमारी गुलजार दादी हृदय मोहिनी जी, वो हेडक्वार्टर की भी दादी जी हैं, बड़ी हैं, परमात्मा का मीडियम है, और दिल्ली की वो इंचार्ज हैं, और प्रकाशमणि दादी जी जो सारे इंडिया की बहन जी वो आ गई, बड़े भाई साहब निर्वैर भाई जी आ गए, आदि आदि, ये सब तय हो गया था। अब था उसमें वीआईपी को लाना।
तो जितने बड़ा हमने कार्यक्रम किया वैसे वीआईपी भी आए होंगे? हाँ,
तो उसमें वीआईपी को जो लाना था तो पहले अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तो हमारे काफ़ी सहयोगी रहे हैं, तो हमने उनको अप्रोच किया, तो बोले भाई ऐसा है, पहली बात तो यह है कि मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम ऑलरेडी है, उसको तो मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन आपका इतना बड़ा ऑडियंस हिंदी जानता है, अब मैं तो इंग्लिश में बोलता हूँ, तो मेरा उनसे मेरा रैपट नहीं रहेगा कि हिंदी ट्रांसलेशन भी नहीं हो सकता, इसलिए आप इस बारी मुझे एक्सक्यूज़ कर दें। तो उनका कहना जायज़ था, इंग्लिश में भाषण करेंगे। तो फिर हमने सोचा नेक्स्ट कौन है, तो नेक्स्ट उस वक़्त भैरव सिंह शेखावत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे
जी।
और भैरव सिंह शेखावत जी राजस्थान के हैं, वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे थे, और वो एक बारी इलाज के लिए हमारे माउंट आबू के हॉस्पिटल में आए थे,
ग्लोबल हॉस्पिटल में
कुछ उनको इलाज कराना था या उनके किसी रिश्तेदार को कराना था, तो आए थे। तो उन्होंने वहाँ की, हमारे अपने ही डॉक्टर नर्सिस हैं, तो वहाँ की बहनों का ट्रीटमेंट देख के बहुत ही खुश हुए थे। और फिर वो हमारा एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट था, उसमें वो कम से कम 15 दिन आते रहे थे बाद में सेकंड विजिट में
जी।
तो उस वक़्त हमारी एक बिन्नी, डॉक्टर बिन्नी सरीन वहाँ पर है, उन्होंने PhD की है, वो वहाँ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थी, तो वो उनका बहुत ध्यान रखती थी उनको अच्छी तरह से, तो उनको वो बेटी की तरह समझते थे, उनका स्नेह था
जी।
तो हमने बिन्नी बहन को कहा कि देखिए इनको लाना है, उनके लिए तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ब्रह्मा कुमारीज के प्रोग्राम में आए, तो आप दिल्ली आ जाओ और आपके साथ हम चलेंगे और किसी तरह से कन्विंस करेंगे तो आएंगे। वो आ गई तो हम उनके साथ मिले, उन पुरानी बातें बहन ने उनको याद कराई, बहुत खुश हुए। अच्छा, फिर अपनी हिस्ट्री सुनाई, मैं पहले क्या था। अच्छा, फिर बहन जी ने कहा देखो भाई साहब ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, हम इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, सार ये है कि वो मान गए। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी ब्रह्मा कुमारीज के प्रोग्राम का उद्घाटन करे, ऐतिहासिक बात होनी थी
जी।
अच्छा, फिर एक होम मिनिस्टर थे उस समय आई डी स्वामी होम मिनिस्टर थे, करनाल के थे, तो वहाँ भी हमारे करनाल के भाई, जब वो नहीं थे होम मिनिस्टर तो उनका अच्छा परिचय था, उनको भी हम लोगों ने जाके उनके साथ मिला, महत्व बताया, तो बाबा ने मदद की, बुद्धि टच की, वो भी मान गए।
अच्छा,
तो एक तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान गए और एक होम मिनिस्टर मान गए, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे लिए तो हो गया।
तो अच्छा, भाई साहब ये कितने दिन का कार्यक्रम था?
नहीं, कार्यक्रम तो एक ही दिन का था।
ओके।
क्योंकि 80,000 लोगों को इकट्ठे करना, उसकी तैयारी में आगे पीछे लगता है, क्योंकि वहाँ दादियों के दिन में रहना था, तो वहाँ कमरे, वहाँ जो वीआईपी रूम्स थे वो हमने लिए, उनको अरेंज किया, उनके रेस्ट का अरेंज, बहुत सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है,
पब्लिक प्रोग्राम था।
क्योंकि और फिर हमारे भाई बहन बाहर का भोजन नहीं करते, तो हमने परमिशन लेकर एक कमरा बनवाया जहाँ पर हमारे सेवादारी वर्कर दादियों के लिए खास तौर पे, वो लंबा प्रोग्राम था, बहुत हमें शिक्षा मिली उसमें, इतने बड़े प्रोग्राम को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन दिल्ली वाले इस धुन में थे, किसी को कोई ख्याल ही नहीं था सिवाय ये प्रोग्राम हो। अच्छा, अब क्या हुआ कि दिल्ली में एक पचकुया रोड है, वहाँ हम कुछ प्रोग्राम के लिए चीज़ें मिलती हैं डेकोरेशन की आदि, वहाँ एक दुकान में मैं और आशा बहन कुछ खरीद रहे थे
जी।
उस समय फ़ोन आया अब्दुल कलाम जी के ऑफिस से आया, तो कुछ उन्होंने बोला, मैंने उठाया, दुकान थी, शोर था, तो मुझे लगा कि अब्दुल कलाम जी के ऑफिस से फ़ोन आया
जी।
तो मैंने कहा बहन जी सुनिए, तो अब्दुल कलाम खुद बोल रहे थे।
अच्छा।
हाँ, उन्होंने कहा मैं अब्दुल कलाम बोल रहा हूँ सिस्टर। तो वहाँ तो शोर था, तो बहन जी दुकान से बाहर निकल के साइड की खाली जगह में चली गई। तो बोले कहिए, तो कहता है कि द डिवाइन वॉइस इज कॉलिंग मी, आई एम कमिंग टू द प्रोग्राम।
तो फिर वो आए उसके बाद प्रोग्राम।
यानी बतनी खुशी की बात थी, वो राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं, ऊपर की आवाज़ मुझे कह रही है आई एम कमिंग टू द प्रोग्राम। अब सोचिए ये किसकी मदद हो सकती है। अच्छा, हमने वाइस प्रेसिडेंट को बुक किया हुआ है और प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं मैं आऊँगा, क्या कह सकते हैं उनको, मतलब प्रेरणा मिली कुछ, तो वो भी आए। अब आप देखिए कि किसी प्रोग्राम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साथ साथ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ जाए, और जबकि ब्रह्मा कुमारी इतना नोन नहीं थे। और फिर दूसरी बात क्या हुई कि वो ऑडियो स्टेडियम खचाखच भर गया, सारे ऑफिशियल्स हैरान थे, सारे उनकी सिक्योरिटी हैरान थी कि इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं, मच्छरों की तरह आ रहे हैं। वो सारा स्टेडियम तो भर ही गया, उसके अंदर जो ग्राउंड्स होता है उसमें हमने प्रिकॉशन लिए हुए थे, क्योंकि जो एड्रेस करेंगे तो सामने जो ग्राउंड में लोग बैठे होते हैं वो भी काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, मेरा ख्याल है अब तो याद नहीं 9-10 हज़ार लोग उसमें बैठ सकते हैं। फिर उन पीछे जो स्टेडियम में बैठे हुए थे, तो ऐसा ग्रुप था जिसके हेड्स रेस के नाम से शायद पीस लिखा हुआ था, वो भी बनाया गया था, बड़ा वंडरफुल लग रहा था। तो इस प्रकार से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए, और दादियाँ तो थी, गुलजार दादी थी, अपनी प्रकाशमणि दादी थी, निर्वैर भाई जी आए थे। तो आबू से तो कहने का भाव ये है, वो इतना भव्य प्रोग्राम हो गया, मैं समझता हूँ कि दिल्ली का ही नहीं सारे भारत का प्रथम जिसको हम मेगा प्रोग्राम के शुरू होने वाला वो हो गया।
तो भाई साहब कहाँ तो हमें परमिशन भी नहीं मिल रही थी, और अभी, और कहीं ना कहीं बाप दादा की इसमें ये भी मदद रही होगी, क्योंकि अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट बनने से पहले भी संपर्क में थे, मधुबन भी गए, शायद बाप दादा से भी मिले हुए हैं।
मतलब ये है कि उन्होंने ना करी
जी,
रीजनेबल है कि एक व्यक्ति इंग्लिश में बोल रहा है, 80,000 लोग जो हैं वो इंग्लिश थोड़े जानते हैं, तो रैपर्ट नहीं बनता ना। तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें, फिर पता नहीं उनको बाबा ने प्रेरणा दिलवाई, हाँ कर दी। हमने कहा जी अब वाइस प्रेसिडेंट साहब को, हमने कहते नो मैटर, वो आ गए। तो इस प्रकार से ये एक ज़बरदस्त बाबा ने मेगा प्रोग्राम करवाया, और इसमें आप देख सकते हैं कि बाबा की मदद कितनी रही, और सारे बीके और अथॉरिटीज़ हैरान थी कि गवर्नमेंट छुट्टी देकर प्रोग्राम करती है, कई कल्चरल ग्रुप वाले आते हैं, इतना कभी नहीं भरा। हम भी हैरान थे कहाँ कहाँ से बाबा ने टच करके बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया, आसपास के सैटेलाइट टाउन से भी भाई बहन आ गए। फिर हमने उस प्रोग्राम का महत्व रखते हुए, एक महेंद्र कपूर प्लेबैक सिंगर है बॉम्बे का, बड़ा मशहूर है
जी।
और उस महेंद्र कपूर ने ब्रह्मा कुमारीज के जो एक्सक्लूसिव सॉन्ग्स हैं वो भी बहुत से गाए हैं। तो हमने सोचा इस मौके पर महेंद्र कपूर को भी बुला करके इतनी बड़ी ऑडियंस में उसका भी ऑनर होगा, प्रसिद्ध है वहाँ, उसको बुलाया। तो अपने बेटे को साथ लेके आए, और दोनों ने, बाप बेटा ने मिलकर वहाँ गीत गाया। ये भी एक बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ थी कि बॉम्बे का एक आर्टिस्ट प्रसिद्ध दिल्ली में आकर के परफॉर्म कर रहा है। तो उसके बाद, प्रोग्राम के बाद मीडिया की दादी जी से मुलाकात हुई। अगर आप उसका फोटो देखें तो 100 से लगभग मीडिया वालों के माइक लगे हुए हैं, और दादी जी उनको बोल रही हैं, ऐसा ब्रह्मा कुमारी के इतिहास में बाद में भी कभी नहीं हुआ।
तो दादी का इंटरव्यू भी लिया गया,
इंटरव्यू लिया गया।
तो वो इंटरव्यू कैसा था दादी के साथ का?
मतलब बहुत अच्छा, उन्होंने पूछा, सारा कुछ पूछा दादी ने, मैं तो उस वक्त मौजूद नहीं था
जी।
लेकिन मैंने उसके, मैं प्योरिटी मैगजीन निकालता था, उसमें मैंने उसके फोटो छापे, आज भी वो आउटस्टैंडिंग है। ये जैसे कोई राष्ट्रपति होता है उसको लोग इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि उस वक्त सारे नगर में, दिल्ली कैपिटल सिटी है, इतना उसका आवाज़ हो गया। फिर मुझे याद है कि हमने उसकी पब्लिसिटी भी पहली बार इतनी पब्लिसिटी उसकी की थी, इतनी पब्लिसिटी की थी, मुझे याद आता है बहुत, शहर में कितने बैनर लगाए, कितने टेलीविज़न के द्वारा, अखबारों के द्वारा पब्लिसिटी की, और जो ऑटो रिक्शा होते हैं
जी,
जितने भी ऑटो रिक्शा थे सबके पीछे हमने लगवाया हुआ था चलो नेहरू स्टेडियम 9 नवंबर, ये ऐसा मशहूर हो गया था। और छोटे छोटे हमने होते हैं ना टीवी के जैसे छोटे छोटे स्किट्स अपने ही भाइयों से बनाए थे कि कोई डॉक्टर से मिलने जा रहा है, फिर वो कहता है अगली अपॉइंटमेंट, कहता 9 नवंबर को मैं नहीं आ सकता।
अच्छा।
मैं वहाँ इस प्रकार से,
तो ये सब भाई सब कैसे किया था, सारे ऑटो के पीछे लगवाना, ये कैसे किया?
मतलब सबसे मिल मिल कर,
मिलकर
और सारे हमारे कई भाई हैं इस बात में एक्सपर्ट है। एक विवेक भाई है आबू में, उसने एक स्किट तैयार करके दिया था। एक और प्रशांत भाई है, दो तरह के वो बहुत सुंदर थे, तो उसको व्यक्ति को फटाफट अलग अलग स्टोरी की तरह से थे, मतलब हमको इतनी खुशी थी और फर्स्ट टाइम इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ और बहुत सफलतापूर्वक हुआ, जिसको कहते हैं ना एक धक से एट वंस सारे दिल्ली के अंदर कितने इंटेलिजेंसी है, टीवी है, कितने चैनल, सारी गवर्नमेंट, और यानी ये तो हो ही नहीं सकता ना ऑफिशियली भी कि किसी प्रोग्राम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट इकट्ठे आ जाए, हो ही नहीं सकता।
प्रोटोकॉल भी तो नहीं है,
नहीं है, एक आता है और फिर होम मिनिस्टर भी आ जाए, तो क्या है, ये बाबा का वंडर था।
तो इसलिए बाप दादा जो है वो दिल्ली को दिल कहते हैं।
और सुनिए, उसके तीसरे दिन बाबा ने आबू में आना था, अब एक तो बाबा की पधामनी थी, तो ये प्रोग्राम समेट करके दिल्ली का सारा ग्रुप माउंट आबू गया। तो जब वो जा रहे थे तो तब भी ट्रेन में लोग कह रहे थे ये वही हैं जिनका वहाँ प्रोग्राम हुआ, और बाबा ने अपनी पधरामनी में सारे दिल्ली वालों को आगे बुलाया, आगे जो वेल होता है, और बुला के बाबा ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही रोमांचक तरीके से दिल्ली वालों की बहुत उनकी मतलब प्यार किया, उनकी सराहना की, वो भी एक देखने वाला सीन, क्योंकि बाबा को पता है कि आगे इससे और मेगा प्रोग्राम हो।
और भाई साहब ये भी हमने सुना है कि उस प्रोग्राम में आपने खास लिफ्ट भी लगवाई थी।
हाँ, वो ये था कि नेहरू स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम था, उसमें पोडियम तक पहुँचने के लिए उसमें एक पोडियम बना हुआ था बाकायदा तौर पे
जी,
एक एलिवेशन पर जाके ना, बहुत सारे उसमें ऑफिसेज थे, ये था, लेकिन एक बहुत सारी गैलरियाँ क्रॉस करके उसके लेंथ वाइज सेंटर में बना हुआ स्टेज, जहाँ से नेता लोग भी भाषण करते हैं जब उनके प्रोग्राम होते हैं। लेकिन उस पर जाने के लिए हमारे VIPs को इधर उधर से घूम के जाना पड़ता है, तो सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ती हैं, तो हमने उस बाहर से अरेंजमेंट किया था और स्पेशल लिफ्ट लगवाई थी कि जो वहाँ खड़े हो जाएं ऊपर चढ़ जाएं, और स्टेज के पीछे बहुत बड़ा स्टेज बनाया हुआ था जहाँ उनके बैठने का, खाने पीने का, रेस्ट का, हर चीज़ का प्रबंध फर्स्ट क्लास किया हुआ था। दिल्ली के बेस्ट जो टेंट वाले हैं उनको रखा होता, वो सीधे आकर के उसमें चढ़ जाते थे, तो ये भी बात हुई थी।
तो कहीं ना कहीं भाई साहब बाप दादा की मदद ही होती है जो इतने सारे लोग सहयोगी बनते जाते हैं, विपरीत परिस्थिति होते हुए भी, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हुए भी, कहीं ना कहीं बाबा रास्ता निकलवा देते
हर जगह, यानी एक भी खास तौर पे वो जो आर्मी वालों का था इम्पॉसिबल था, तो उसको भी बाबा ने करवा दिया, तो ये इतनी शानदार सक्सेस की बात हुई। और इस प्रोग्राम से ना सिर्फ दिल्ली, सारे भारत के बीकेज में जो उमंग आया कि अब गवर्नमेंट भी ब्रह्मा कुमारी को रिकॉग्नाइज करती है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक प्रोग्राम में आ जाए और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी उसमें आ जाए, बड़ी वंडरफुल बात हो गई थी। तो और दादियाँ भी बहुत प्रसन्न थी, सारे प्रसन्न थे कि भाई एक स्टेटस, जैसे आपने कहा एक माइलस्टोन होता है किसी संस्था का स्टेटस रेज करने के लिए, तो दिल्ली में जो बहुत सालों से सेवाएं हो रही थी, क्योंकि सबसे पहला सेवा केंद्र बाबा ने दिल्ली में स्थापित किया
जी,
और यहाँ बाबा ने ऐसे बच्चे रखे हुए थे जैसे जगदीश भाई थे जो लिटरेचर लिखते थे, बड़ी बड़ी ऐसी कोई बड़ी दादी नहीं होगी जिन्होंने दिल्ली में आके पालना ना दी हो, तो वो सारे का जो बैकग्राउंड बना हुआ था और बहन भाइयों में बड़ा स्नेह था, संगठन था, अब उसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए, इम्पिटस देने के लिए बाबा ने ये प्रोग्राम कराया। और इसके बाद तो कितने मेगा प्रोग्राम दिल्ली में हुए हैं उसका तो रिकॉर्ड है। लेकिन इसकी खास खूबी है, दिस वॉज द फर्स्ट सच प्रोग्राम इन दिल्ली, जिससे सारे भारत, तो क्या विदेशों में भी जो हमारे सेंटर हैं, सब के अंदर एक लहर दौड़ गई। कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों प्रोटोकॉल भी अलाउ नहीं करता, लेकिन अब्दुल कलाम जी खुद कहें कि मैं आना चाहता हूं तो कोई रोक भी नहीं सकता। तो इस प्रकार से हुआ। जब उनने ये कहा कि मुझे डिवाइन कॉल आई है, और वो भी हम जबकि शॉपिंग कर रहे हैं, खुद फ़ोन कर रहे हैं, आई विल कम, हमने उनको हम्बली कहा कि जी इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट वहाँ फिक्स हो चुके, नो आई विल कम, आए वो।
तो बहुत अच्छी बात है,
भगवान ने प्रेरित किया।
भाई साहब, मैं इसमें ये भी समझ पाती हूँ कि एक तो होता है प्रोग्राम में बाप दादा की मदद, एक है प्रोग्राम ही बाप दादा की मदद है, जिससे कि हम बच्चों का तन मन धन सब कलाएं सारी चीजें सफल होती हैं। ये तो हमारा भाग्य कैसे बनेगा,
उसमें कितना कुछ सीखा, हमें क्या पता कि NOC इतने लोगों से लेना, तो अब हर जगह जाना पड़ता है। और फिर वो लोग कुछ ना कुछ अपना अड़चन तो लगाते ही हैं, हम बाद में दे देंगे, रख दीजिए, वो सब होता है। और जब तक आप सारे NOC इकट्ठे करके नहीं देंगे, वो परमिशन नहीं देंगे आपको। अच्छा, फिर एक एक चीज़, केटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मैं ही यहाँ केटरिंग करूँगा और बाहर कोई अलाउड नहीं है, क्योंकि उसको उसकी कंडीशन में लिखा होता है। उस कॉन्ट्रैक्टर को मनाया कि भाई ये ब्रह्मा कुमारीज हैं, सारे ब्रह्मा कुमारीज के ही आने वाले हैं, और ये हम तो बाहर का खाना नहीं खाते, तो आप हमें परमिशन दो। फिर उन्होंने हमें कमरा अलॉट किया जहाँ हमने भोजन, दादियाँ आई हैं तो उनके लिए भोजन बनाएंगे कि नहीं, सारे वर्ल्ड की फेमस दादियाँ आई हैं, बड़े भाई आए हैं, उनके रूम सजाने, बाकायदा तौर पे घर जैसा वातावरण, हम बाहर की किसी का चादर भी यूज़ नहीं करते दादियों के लिए, होलीनेस, तो सारा ला करके कितने डिपार्टमेंट हमने बनाए होंगे। अच्छा, फिर और मुझे याद है, क्योंकि ये दोनों बड़े आ रहे थे, होम मिनिस्टर भी आ रहा था, तो सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी। इतनी सख्त सिक्योरिटी थी वहाँ कि एंट्री जो थी वो 1x1 अलाउ कर रहे थे, दो उन्होंने स्थान बनाए हुए। बड़े बड़े हमारे VIP, ये महेंद्र कपूर भी लेट हो गया, यानी वहाँ तो वो रोक देते हैं, वो तो ऑफिशियल सिक्योरिटी होती, बड़ी बड़ी बहनें, उन वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल निकल हमें फ़ोन कर रहे थे, आप उनको फ़ोन करिए, आइडेंटिफाई करिए, इस तरह से हो गया था। क्योंकि एक भी VIP हो तो कितनी सिक्योरिटी होती है, यहाँ 3 VIP हैं तो कितनी ज़बरदस्त, और कितना खुला ऑडिटोरियम है, उसके चारों तरफ कितना ओपन है, ऐसा तो नहीं है ना, तो कहीं तरफ से कोई भी किसी तरफ से उसको तो किले जैसा बनाना पड़ता है उनको, क्योंकि उनकी बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो वो भी हमने सीन देखा कि एक यानी प्राइवेट संस्था के लिए जो बिल्कुल गवर्नमेंट के सारे प्रबंध हो गए, गवर्नमेंट के सारे अरेंजमेंट हो गए, और हर चीज़ वो सफाई भी करवाते हैं, जब बड़े बड़े लोग आते हैं ना तो सारे की सफाई करा देते हैं, सड़कों पे सफाई करा देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, दूर से ही कंट्रोल होने लग जाता है ट्रैफिक का, सारे दिल्ली की पुलिस वहाँ लग जाती है, ये सारा सीन हमने देखा। भगवान क्या नहीं करवा सकता।
और बाप दादा ने युक्ति भी हमें पहले से दी हुई थी कि स्पोर्ट्स विंग बना हुआ है, ऐसे हर एक विंग बने हुए हैं, ताकि कहीं ना कहीं से युक्ति से बाबा अपना खाने
नहीं तो वो दे ही नहीं सकते थे। अगर हम माँ स्पोर्ट्स ना करवाते उनका लॉ नहीं कहता, तो निमित मातर वो भी करवाया
जी।
हाँ, अब मुझे याद नहीं है, छोटी मोटी शायद रेस भी करवाई थी, अब उनकी फॉर्मेलिटी सारी पूरी करने के लिए, जब उन्होंने समझा इतना बड़ा कार्यक्रम है और हमने उनको बताया कि हम बड़े बड़े लोगों को उसमें लाएंगे, तो ओके हो गया।
तो देखा हम सभी ने किस प्रकार से बाप दादा ने हमें जो सेवा के छोटे बड़े युक्तियां बताई हैं, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं विहंग मार्ग की सेवा के लिए। और बाप दादा का विहंग मार्ग की सेवा कराने की जो प्रेरणा बाबा देते हैं, ये हम बच्चों के लिए मदद है और उस प्रोग्राम को भी पूरा कराने में बाप दादा की ही मदद हमें यूज में आती है, हमें कार्य में आती है।
एक बात मुझे भूल गई, उस नेहरू स्टेडियम के बाद हमने फुल स्टेडियम तो कभी नहीं किया, लेकिन वहाँ एक वार्मिंग अप ग्राउंड्स होता है
जी,
और एक हॉल भी होता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन आते रहते हैं ना, नॉर्मल तौर पर वो इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन को, हाई को, सीनियर वंस को तैयार करने के लिए वो दिए रखते हैं। तो हमने अनेक मौक़ों पर उनके वार्मिंग अप ग्राउंड लेकर भी प्रोग्राम किए हैं, और उसके बाद जो उनका हॉल है उसमें भी हमने प्रोग्राम किए हैं। तो नेहरू स्टेडियम हमें आज भी हम चाहें तो वहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके इर्द गिर्द बहुत खुली ग्राउंड्स हैं। अब शायद उन्होंने उसके पास में कुछ स्ट्रक्चर बना दिए हैं, लेकिन तब तक वो बहुत सालों तक हम उसको यूज़ करते रहे।
अभी भी भाई साहब बहुत रिसेंट पास्ट में ही हमने नेहरू स्टेडियम में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और भी किए हैं,
बड़े बड़े प्रोग्राम के लिए वो हमें मिलता रहा।
तो ये भी बहुत भाई साहब बाप दादा की मदद है, जो गवर्नमेंट से भी सहयोग मिलता रहता है और हर प्रकार का सहयोग हमें, और ये भी सहयोग है कि बाप दादा ने दिल्ली को एक बना के रखा है, सब भाई बहनों का उमंग उत्साह और दादियों की उसमें पालना का बीज पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से बाप दादा की मदद से हर असंभव कार्य संगम युग पर हुआ ही पड़ा है, या यूँ कहें कि संगम युग पर असंभव कुछ है ही नहीं। ऐसी ही कुछ और यादें लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे, तब तक के लिए ओम शांति।